शास्त्रों के मूल, वेद वेदांत उपनिषद के मूल कौन है? जहां पर स्मृति और श्रुति दोनों में विवाद हो तो वो कौन सा मान्य है? क्यों? स्मृति स्मार्ट ऋषियों के बनाए हुए हैं ना? वो कुछ चीज अनुभव करके अपने शब्दों में उन्होंने लिखा है, उसमें भ्रम प्रमाद हो सकता है, किंतु भगवान के जो बतलाए हुए हैं उनमें कोई दोष नहीं। इसलिए वेद सबसे अधिक, वेदों का भी सार एक महानुभाव नारायण ही स्वयं मंथन करके उसके असार चीजों को दूर करके श्रीमद् भागवत रूप में उसको स्थापित किया, इसलिए निर्मल हुआ। इसलिए जितने भी प्रकार के पुराण हैं, जितने प्रकार के वेद परिषद हैं, सब में प्रमाणिक है श्रीमद् भागवत का बात। यदि वो ठीक कहते हैं परमार्थ के विषय, ये परमार्थ का विषय है, तब तो उस पर प्रमाण कर महाप्रभु जी यही कहते हैं, जब शास्त्र विभिन्न उत्सृज्य वर्तते काम आचार न सिद्धिम आत्मोति न सुखम न परां मति गति गति। जब शास्त्र विधिम उत्सृज्य, जो शास्त्र की विधियों को छोड़ करके एकांतिक भक्ति भी करते हैं, उत्पात भक्ति अनन्य कर रहे हैं, पूजन खूब कर रहे हैं, बिना देवताओं की उपासना किए हुए मुख में अन्न जल चाहे संध्या तक हो जाए नहीं ग्रहण करते, रात रात भर जागरण करते हैं, सब कुछ करते हैं, किंतु शास्त्रों के अनुकूल नहीं करते तो क्या होगा? बेकार उत्पात ही भी उत्पात हो जाएगा। यहाँ पर वही करें, जब शास्त्र ये गीता करें, जब माने जो लोग शास्त्रों की विधियों को छोड़ करके कामाचार का स्वतंत्र अपनी इच्छा से जो करते हैं, न सिद्धम उनकी सिद्धि नहीं होगी, न सुखम सुख भी नहीं होगी, न परां परमार्थिक गति भी नहीं होगी। और ये कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित, परमार्थिक कार्य के लिए व्यवस्था किसमें है? शास्त्र, सत शास्त्रों में उसकी व्यवस्था दी गई, गीता भागवत रामायण उपनिषद वेद, जिस बात को कहते हैं उस बात को सही मान करके उसी पर चलते। जितने भी लोग टट्टी पैखाना करते हैं और हार्ड होते हैं, अपवित्र होते हैं, किंतु वेदों में श्रुतियों में ये कहा गया है गोबर फौरन पवित्र है और शंख ये हार है किंतु ये पवित्र, चमड़ा अपवित्र है किंतु मृदंग ठाकुर जी के घर में जा सकता है,
दूध और मधु पवित्र।
तो इसी तरह से ये शास्त्र के बारे में क्यों विचार करते हैं? गोबर इतना पवित्र है ऐसे नहीं समझेंगे हम, जब वैज्ञानिक तरीके से जब देखेंगे ये शास्त्र में ये ठीक कहा गया है। स्वयं भगवान अस्थि को लेते हैं, शंख बजाते हैं, भक्त लोग भी इसका व्यवहार करते हैं, इसलिए शास्त्रों की बातें मान करके ही चलनी चाहिए। इसलिए चैतन्य महापुरुष कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणते कार्याकार्य, कार्य और कार्य में जहां हमको संशय होता है शास्त्रों में जो चीज बातें दिखी हैं उसी को मान, विशेष करके साध और साधन में तुम प्रमाण जो कुछ जो दो कहते हो उसका शास्त्रीय प्रमाण, विशेष करके श्रीमद् भागवत का प्रमाण दो। तो वही करें प्रभु कहे परम श्लोक साध्य, जीवों के लिए परम साध्य क्या है आप ये बतलाइए। ये नीचे से चल रहे हैं, क्रम से तो नहीं किंतु नीचे से चल रहे हैं। राय स्वधर्म आचरणे विष्णु भक्ति है, अपने अपने वर्ण और आश्रम से जिसके लिए शास्त्रों में निर्धारित किए गए हैं कि वर्णों के धर्म ये हैं, आश्रम वालों का धर्म यह है, जैसे ब्राह्मणों का धर्म चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और चार आश्रम है, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, संन्यास। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और ब्राह्मणों के कुछ कर्म निर्धारण किए गए, पढ़ना, जजन जाजन, अध्ययन अध्यापन दान पति, ये छह। जो ब्राह्मण वेद शास्त्र का अध्ययन नहीं करता, नहीं कराता, सदा सदाचार संपन्न नहीं होता, भगवान का भजन नहीं करता, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण होगा ब्रह्मे विचरति सर्वदा, केवल उपवीत धारण करने से या ब्राह्मण के कुल में जन्मे हैं इससे नहीं। इसलिए अपने वर्ण और आश्रम, जैसे गृहस्थ है, गृहस्थ में चार व्यक्तियों का, गृहस्थ ब्राह्मण भी हो, गृहस्थ ब्राह्मण भी हो सकता है,
क्षत्रिय
भी होगा,
वैश्य
भी शुक्र, ये गृहस्थ। और वो चार प्रकार के ब्रह्मचारी भी होंगे उन्हीं में से, और सन्यासी भी उन्हीं में से ही, सभी उसी में से आएंगे। और सबका रूप जो है कौन है, गृहस्थ। सबका पालन पोषण करने वाला कौन है, वो गृहस्थ ही है। इसलिए कहीं कहीं पर गृहस्थों को सब आश्रमों का और वर्णों का रूप बतला दिया।
गृहस्थ बड़े हैं, बड़े हैं या सन्यासी,
मूल बतलाया गया।
और लोग झगड़ा करते हैं, बोले हम गृहस्थ बड़े हैं,
मतलब ठीक है बड़े हीरा निकलता है ना, पहले की खान से तो हीरा, तो खान बड़ी है या हीरा बड़ा है। अपने अपने स्थान पर जिसमें भक्ति है वही बड़ा है। तो गृहस्थों के भी कुछ धर्म है, कोई भी अतिथि आए उसका आदर सम्मान करें, दान देंगे और भगवान का भजन करेंगे, ये सब ब्राह्मण के कुछ लक्षण हैं। कुछ वानप्रस्थियों के, कुछ ब्रह्मचारियों के, सन्यासियों के सब लक्षण हैं, इनका भी कुछ बतलाया गया है। वानप्रस्थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इन सबका बतलाया गया है शास्त्रों में। अब उसमें कहते हैं स्वधर्म आचरण विष्णु भक्ति है, स्वधर्म आचरण विष्णु भक्ति है। हमारा वर्णाश्रम धर्म ऐसा बनाया गया है जिसमें अपने आप आचरण किया जाए तो विष्णु भक्ति होने की संभावना होती है, हो ही जाएगी कोई गारंटी नहीं, किंतु होने की संभावना नहीं भी हो सकती। तो यहां पर उसी के लिए कहा गया, श्लोक पढ़िए तो उसने विष्णु पुराण का यह श्लोक उन्होंने दिया है। बड़ा समाचार था पुरुषेण परम कुमार विष्णु आराधते पंथा न तत्तोष कारण, इसका अर्थ यह हुआ वर्णाश्रम धर्म में जो आचरण करता है सचमुच में ठीक ठीक वर्णाश्रम धर्म का जो पालन करता है, वर्ण और आश्रम, ऐसे पुरुषों के द्वारा परम कुमार जो पर वस्तु भगवान है, मनुष्य मात्र जो इन वर्णाश्रम धर्म का ठीक ठीक पालन करता है, उसके द्वारा, उस पुरुष के द्वारा भगवान विष्णु आराधना नन्नत तक, और कोई दूसरा उपाय नहीं है यहाँ पर बोलता है निष्ठा उत्पन्न करने के। इसलिए अपने अपने वर्ण और आश्रम में रहता हुआ व्यक्ति जो भगवान विष्णु की आराधना करता है उसे भगवान विष्णु। महाप्रभु जी ने कहा कि हो बात आगे बढ़ा, ये बाहर क्यों कहा, पहली बात हमने पहले बताया साध्य और साधन होना चाहिए, स्वरूपानुबंधी। हम जीव स्वरूप हैं, इसलिए जीव मुक्ति भी इसी को कहते हैं, मुक्ति ही तो अन्यथा रूपम, अपने स्वरूप में व्यवस्थित होने का नाम ही यही स्वधर्म है। अपना धर्म है भगवान के प्रति प्रीति का। समस्त जन्मों में अपना अपना वर्ण आश्रम धर्म सब बदल जाएगा, किंतु एक चीज नहीं बदलेगा, वो क्या चीज? जैसे कोई मुसलमान है, हिंदू है, गाय है, बैल है, मनुष्य है, स्त्री है, उसके अंदर में जो प्रीति भाव है, अपने बच्चों को प्यार करना, दूसरों को प्यार करना, ये नहीं बदल सकता, ये जरूर रहेगा, किसी भी स्थिति में नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय हो जाएगा, मुसलमान हो जाएगा, मुसलमान से हिंदू हो सकता है, बौद्ध हो जाएगा, गाय बैल हो सकता है, किंतु गाय बैलों में भी अपने बच्चों के प्रति प्रीति होती है, मनुष्य में भी होती है, देवताओं में होती है, सर्वत्र होती है। ये जो प्रीति है यही यथार्थ में असल चीज है। वर्ण और आश्रम धर्म में इसी को लक्ष्य करके ये बहुत दूर से बतलाया गया है। वैसे तो हम देखते हैं, जब विचार करते हैं, वर्णाश्रम धर्म के लिए कहा गया ए तो सब छाड़ी आर वर्णाश्रम धर्म अकिंचन भैया लय। वर्णाश्रम धर्म को छोड़ करके भगवान का भजन करो, वर्ण और आश्रम और भी कहीं कर संत्याग ज सब धर्मन, जो अपने सब सधर्मों को छोड़ करके भगवान का भजन करता है उत्तम पुरुष है। सर्वधर्मान प्रत्यज्यमान एकम शरण, ये सब कहा गया। और यहाँ ये कह रहे हैं वर्णाश्रम धर्म का अच्छी तरह से पालन करने वाला व्यक्ति, पालन करता हुआ भगवान विष्णु की जो आराधना करता है, यही उनकी प्रसन्नता का एक मार्ग कार्य है और दूसरा कुछ। अब ये दोनों में जो भेद बतलाया है, एक में कहते हैं कि वर्णाश्रम धर्म से नहीं होगा, इसको छोड़ो, और एक कहते हैं यहाँ पर विष्णु की प्रीति से होती है। तात्पर्य क्या है इसका? रिकॉन साल कैसे हम लोग करेंगे, इसका सामंजस्य कैसे करें? यहां पर ये कहते हैं, ये श्लोक विष्णु पुराण से है, उसके बाद ही में एक और श्लोक आया है, उसी श्लोक में है, जो जब सुना श्रोता ने, उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा, जिसको वो सुना रहे विष्णु पुराण, पूछा अच्छा ये जो वर्णाश्रम धर्म का पालन आप जो कर रहे हैं करने से, और उसमें विष्णु की आराधना होती है, उससे भगवान की आराधना हो जाती है और उसे प्रसन्न होता है, उससे क्या होता है, उसका फल क्या है, तब वो बतला रहे। फल होगा क्या? संसार में वो व्यक्ति सुखी रहेगा, उसको स्वर्ग मिलेगा, और वो चाहे ठीक ठीक पालन करे तो उसको संसार से मुक्ति भी मिल जाएगी। ये तीन चीज बतला है, किंतु तीनों में से कोई भी जीव का स्वरूपानुबंध ही नहीं है। कितना लगा?
सात दस
हो गया। यहां पर यह विचार करने का एक बात, हिंदुओं में ऐसी प्रथा थी अभी तक, प्रत्येक हिंदुओं के घर में शालग्राम शिला इत्यादि रहती है, और लोग उसको ब्राह्मण लोग पूजा, अंततः ब्राह्मण जरूर पूजा करते हैं, और क्षत्रिय लोग आकर के ब्राह्मणों के घर में उनकी पूजा देखते थे, उनको प्रणाम करते थे, नहीं तो अपने घर में भी ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रिय ये तीनों ही पूजा करने के अधिकारी थे दीक्षा लेने के बाद।
यहाँ तक कि स्त्रियों को भी तो बताया गया,
स्त्रियां तो ये लोग कर सकते हैं। शूद्रों के लिए इसमें कहा गया कि अत्यंत शोक में बद्ध रहते हैं और उनको फुर्सत नहीं है, इसलिए उनके लिए नहीं कहा। किंतु यहाँ पर शूद्र का विचार करेंगे नारद जी जैसे लोगों के लिए गुणगत, तो वो लोग करने के लिए योग्य है। हम लोग किसी भी हालत में देखेंगे विश्व में कहीं न कहीं सर्वत्र किसी न किसी रूप में वर्णाश्रम धर्म जरूर है। जो लोग विद्या का अध्ययन करते हैं, जिनमें उपकारिता है, सत्यवादिता है, ये लोग ब्राह्मण स्वभाव, ये लोग ब्राह्मण। जो लोग युद्ध प्रिय है, शासन में रहते हैं, शासन करने वाले सूर्य वेद इत्यादि में गुण, दान देते लेते हैं, ये लोग क्षत्रिय, भले उनका नाम न हो क्षत्रिय, हम लोगों के यहाँ ये वैज्ञानिक पद्धति से उनका नाम लिया गया, और लोगों में ये ऐसी पद्धति नहीं जो नाम दे। जो लोग दान करते हैं, कृषि पालन करते हैं, वाणिज्य व्यवसाय करते हैं, ये लोग हैं वैश्य, जो तीनों और सब लोगों की सेवा करते हैं और उसे अपनी जीविका का संग्रह करते हैं, जीविका का निर्वाह करते हैं, ये लोग हैं। इसलिए विश्व में कहीं भी ऐसा नहीं है जहाँ पर कि वर्णाश्रम धर्म नहीं है, कहीं किसी का नाम है और कहीं कहीं पर किसी का नाम है। तो जहाँ उन वर्णाश्रम धर्म में भगवान की आराधना हो तब तो वो सार्थक हुआ, तब तो भगवान उसे कुछ प्रसन्न होंगे। अन्यथा जिस वर्ण और आश्रम में, हिंदुओं में भी जिन घरों में भगवान की पूजा नहीं है, विष्णु की पूजा नहीं है, शालग्राम की पूजा नहीं है, तो वो कैसा है? श्मशान। इसलिए यहाँ पर उन लोगों के लिए बातें बतलाई गई, वर्णाश्रम धर्म में स्थित रह करके विष्णु की उपासना करते हैं, उन्हीं को भगवान।
एक बार 24 महीने में ऐसे
क्या बतला रहा, ब्राह्मण होकर के भी चारों वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्व स्व कर्म करते से चारों वर्ण और आश्रमी यदि अपने वर्ण में स्थित होकर के भी अच्छे अच्छे सब सब कामों को करते हैं किंतु भगवान की आराधना नहीं करते, विष्णु की पूजा नहीं करते, तो वो अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाते हैं, नरक में उनको जाना। सब माता पिता की सेवा करते हैं, पति की सेवा करती है, पत्नी के प्रति उनका व्यवहार ठीक है, संसार में खूब दान लेने देने वाले हैं। कर्म जो था वर्णाश्रम धर्म का पक्का मानने वाला था, ब्राह्मणों को भी पूजा करता था, घर में ठाकुर जी भी हैं और अपनी मैया को भी खूब आदर, बिना मैया का चरण छुए हुए कहीं नहीं जाता, उसने मान लिया है उसको राधा को अपनी मैया, बिना उसके आदेश के कुछ भी नहीं करता। कुंती जी भी जाती हैं जब सुना जी मैया है उनके प्रति श्रद्धा की, किंतु कहा जाए अब मैं तुमको मैया नहीं मानता, अब तो मैया मानता हूँ जिसने हमारा पालन पोषण किया उसी को मान, सीधी उस बात थी, उसने कह दिया। इतना दानी था कि प्राण के संकट आने पर भी दान करता था, मरने पर आया गया, कोई ब्राह्मण आ गया मर रहा था, उसी समय में गिद्ध नोचने आ रहे थे, उस समय कोई ब्राह्मण कहा आया बोला जी हमारी लड़की की शादी है, मैं आपके पास कुछ दान के लिया, अब मेरे पास तो कुछ नहीं मैं क्या दूँ, मैं राजा था उस समय मैं आते दे देता, अरे अभी आपके पास नहीं और लोगों के पास में जाओ और नहीं दे सकते, कहे क्या चाहिए, मुझे सोना चाहिए, मेरे पास सोना था, आपके दांत में सोना लगा, बस उसने तुरंत ऐसा मारा और दांत गया और उसको दे दिया सोने का, दांत उसके सब सोने के बनाए हुए, उसे मणियां सब जड़ी हुई थी। इंद्र को अपना कवच और कुंडल जो जन्म के साथ में जन्मा था उसी दे दिया, किंतु हुआ क्या, भक्त और विष्णु का बस गड़बड़ हो गया। जरासंध महाराज शिवी से वर्णाश्रम धर्म का पालन किया, अपने प्राणों को दे दिया कबूतर की रक्षा के लिए, उनको मिला क्या
स्वर्ग
मिला। राजा हरिश्चंद्र जी अपने बात के बड़े धनी थे, अपनी बात के लिए अपनी स्त्री को शूद्र के यहाँ बेच दिया, अपने शूद्र के यहाँ बेच दिया, अपने बेटे को बेच दिया, यहाँ तक कि अपने बेटे को जब मर गया तो उसके लिए कर्तव्य से चित न होकर के उसके लिए भी जलाने के लिए कर मांगा, ऐसी दृढ़ निष्ठा, वर्णाश्रम धर्म के नियम ही ऐसे हैं, सत्य पर दिखे, किंतु फल क्या हुआ, दधीची का नाम सुना, उन्होंने अपने जीते जीते गाय से चटवा कर दही और बूरा लगा करके चटवा करके जीते जी अपना हार दे दिया इंद्र इत्यादि, फल क्या हुआ, जीता स्वरूपान बन गई इंद्र। इसलिए महाप्रभु जी ने कह दिया कि वो बात आगे कर, बस आगे पंचाकल कल्पतरुणस्य उपासनं देवं च
संतानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावन्दनाय कृष्णाय 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 गौरक्षिषे वंशाकल्पकल्याणार्चितास्तुषस्तदेव च संतानं पावनेभ्यो जीवन के लिए साध्य और साधन क्या है? उन्होंने कहा स्वभाव आचरणे विष्णु भक्ति है। अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जब मनुष्य जिस वर्ग में है और जिस आश्रम में है उसके अनुरूप अपने आवश्यक कर्तव्यों को पालन करता हुआ भगवान की आराधना करता है तो उससे भगवान को महात्मा जी ने कहा तो इसका ये तात्पर्य हुआ कि विष्णु की प्रसन्नता ही यहाँ पर साध्य है और वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करता हुआ भगवान की आराधना विष्णु की जो आराधना होती है वही यहाँ पर साध्य। महाप्रभु जी ने कहा कि ये बाह्य है, ये ठीक नहीं है। आगे आस्त साधारण रूप में हम देखते हैं कि महाराज अंग्रेज थे वो क्षत्रिय थे राजा, तो उनका दान देना सुरता वीरता राज्य शासन दंड निग्रह इत्यादि उस राजा के लिए उचित है। ये वर्ण और आश्रम में है गृहस्थ इसलिए उनके लिए ये उचित। एक राजा है और गृहस्थ है राजा है क्षत्रिय है इनके लिए उचित है सूर्यता वीरता दान दया और शासन। उन्होंने देखा शासन अच्छी तरह से किया, राज्य में चारों तरफ सुशासन चल रहा है, जो डकैत बदमाश लंपट एकदम चुपचाप शांत है, कुछ नहीं कर रहे, कठोर उनका शासन। और दान के लिए उन्होंने कहा था मैं रोज कोटि कोटि गायों का दान करूं, तो ये दान भी कर रहे। और गायें ऐसे नहीं सिंह सोने से बंधे हुए और पैर में चांदी का फूल और अंगों में
सोने का झालर,
सोने की झालर लटकते हुए खूब सुंदर बहुमूल्य कपड़े सुनहले कपड़े से ढकी हुई और ऐसी गाय जिसमें कहीं हाड़ न देखा जाए, बछड़े और बछड़ी समेत जो पूरी देने वाली गाय ऐसे गाय को देखो। आकाश के तारे नहीं गिने जाएंगे, गिन लिया जा संभव हो सकता है किंतु कितनी गाय उन्होंने दान की ये नहीं है, कितनी गाय दान कर ये इनका वर्ण और आश्रम के अनुसार में एक गृहस्थ का एक क्षत्रिय राजा का यह धर्म है जिसको पूरा करता। आज तक वैसा कोई राजा नहीं हुआ जो ऐसा किया, किंतु अंत में इसका फल होना चाहिए अच्छा, इस लोक में भी सुख और परलोक में भी सुख। तो इस लोक में तो सुख को कुछ अब देखा नहीं जाता, बल्कि ब्राह्मण का गाय के लिए झगड़ा हो गया, गाय दान कर दी और वो दान गाय दान कर दिया और उस दल में से निकल करके वो बाहर चली गई। और फिर एक इनके संग्रह करने वाले गाय के जो था वो उस गाय को फिर ले आकर के राजा को दे दिया, इन्होंने फिर दोबारा दान कर दिया। तो जिसको पहले दान किया था वो और जो दूसरा दान किया था दोनों में झगड़ा, ये गाय मेरी है तो मेरी। राजा के पास में गए, राजा कहा ये आपने दान में दी थी गाय, ये मेरी है। वो कहता अरे अभी हमको आपने दान दी। बस खूब झगड़ा लग गया। राजा ने कहा जी इसके बदले में तुम एक गाय ले लो, तुम प्रसन्न हो जाओ। एक गाय का लाख गाय देंगे तभी नहीं, हम तो यही गाय। और दूसरे ने भी यही कहा कि हम दूसरी गाय नहीं, यही गाय आप पृथ्वी का दान कर दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, किंतु गाय वही नहीं। दोनों जीत पर आ गए। राजा ने कहा कि सब उसको नहीं प्रसन्न कर सकते, इसको भी प्रसन्न नहीं कर सकते। फल ये हुआ तुम लोगों ने इनको अभिषम पाते जाओ, तू गिरगिट बन जाए। गिरगिट ऐसे ऐसे कहता है और ऐसे ऐसे भी करता है, ऐसा तू बन जा। देकर के तुम नहीं किया, अब वो गिरगिट होकर के हजारों लाखों वर्षों तक कुएं में बहुत विशाल गिरगिट होकर के। तो ये कर्म का फल हुआ, अच्छे कर्म का ये फल, अच्छा पता है, तो इसका तो ये फल हुआ। राजा हरिश्चंद्र थे सत्यवादी, उस सत्य के लिए उनको अपने बिकना पड़ा, अपने पुत्र को बेचना पड़ा, अपनी रानी को एक शूद्र के यहाँ चंडाल के यहाँ और वो भी श्मशान भूमि में रहने वाले ऐसे लोगों को तो बतलाओ। तो ये कर्म जो मार्ग है इसका गुण दोष होने पर भी दोष इसके होते। दूसरी बात, साधु उसको कहते हैं चरम अवस्था में जिसे कि भगवान को प्रसन्नता हो, चरम प्रसन्नता हो, इसमें अपनी प्रशंसा के लिए अपने अपने सुख भोग के लिए स्वर्ग के लिए ये दिया जा रहा है। यहाँ पर माताएं दान करती हैं घरों में, कोई जाए तो कुछ दे, मिठाई दान कर दिया, कोई कुछ दे, उसका बीमार बच्चा है उसको ऐसा ऐसे आँच करके, अच्छा ये दान हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, तो रोग दान हुआ जी हमारा बच्चा अच्छा हो गया। अब इसमें ये दान नहीं हो करके ये अपने सुख के लिए हो गया, अपना बुरा भला जो कुछ था निर्मंचन करके लो तुम लोग भोग। तो ये तो पाप कर्म हुआ, किंतु अपने सुख के लिए इसे करते हैं और इसी को अच्छा समझते हैं। तो इस तरह से ये कर्म ही ऐसा है, ऊपर नीचे और आदि अंत मध्य है, अशुभ है, इसलिए इसे साथ जो कल्याण है ये इसे नहीं होता। यही नहीं और भी देखा जाए, जहाँ जहाँ ऐसा कर्म है वो कर्मों की गति यही अस्वस्थ अफल, इसलिए उन कर्मों को महाप्रभु जी ने कहा इसके द्वारा भगवान प्रसन्न नहीं होते। उसमें अपने वर्ण और आश्रम के कर्मों से नहीं, वहाँ उसमें एक प्रसन्नता की क्षीण लहर है, वो है क्या, यदि विष्णु की उपासना करता है, किंतु वो विष्णु की उपासना भी करता है, यही ठाकुर जी उपासना जब हो जाएगी, ठाकुर जी हमारा घर सब अच्छा है, हमारे दुख दारिद्र दूर हो, वो भी अपने लिए मांग लेता है, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए नहीं, दे देते हैं किंतु प्रसन्न नहीं, अपने लिए मांग लिया। इसलिए ये कहते हैं महाप्रभु जी यो बात जो आगे कहा इसमें धर्म कर्म नहीं है। जो लोग ऐसा करते हैं ना कर्म लोग, विष्णु के प्रसन्नता के लिए विष्णु की भी प्रसन्नता करते हैं, ठाकुर जी को फूल देंगे माला देंगे उनके चौपट को, ऐसे ऐसे करते हैं ना, दबाते हैं चौपट को, रंगेश्वर में चौपट को दबाते हैं, किस लिए करते हैं? अपने लिए, भगवान के लिए कुछ नहीं। महाप्रभु ने सजाता जी आत्मा से इसका कोई भी संबंध नहीं है, आगे चलिए। कहा क्यों? संसार के अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में ऐसा ही करते हैं, अधिकांश लोग वो धर्म कर्म नहीं भी जानते हैं तत्व से, और ऐसे करने वालों को लोग कहते हैं कि ये बहुत भक्ति करती है, कि भक्ति करता है, तादात्म्य में से ही करता है। इसलिए इसे भक्ति का भगवान के माने आत्मधर्म से इसका कोई भी संबंध नहीं, इसलिए इसको कहा बताओ इसको। प्रभु कहे इहो बात के आगे कहा, राय कहे कृष्ण कर्मार्पण सर्व प्रसाद प्रसाद। राय रामानंद ने कहा कि कृष्ण कर्मार्पण, जो कुछ करो कर्म वो कृष्ण को अर्पण, उसका फल लेकर के भगवान को अर्पण कर। और सर्वसाध्य सार, समस्त साध्यों का ये सार है। इसमें एक बात है, कृष्ण का कर्म अर्पण या उसका फल अर्पण करना ये साधन है ना साध्य है? अभी तो साधन है ना, अपने कर्मों का फल भगवान को अर्पण करना ये है साधन। किंतु इनको कह रहे हैं सर्व साधन सार, इसका तात्पर्य ही है इसके द्वारा जो फल मिलता है वो साध्य है। अब इस पर हम लोग विचार करें। महाप्रभु जी ने कहा इहो बाह्य आगे का, ये भी बाहरी है, ये भी आत्मानुसंबंधित ना, ये कोई धर्म नहीं। अब इसी पर चलते हैं। आप लोगों को याद होगा श्रवणं श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सत्यात्मनिवेदनं इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन वलक्षणा क्रियेत भगवती अध्यातन मन्ने अतीतम्। हिरण्यकश्यपु ने कहा तुमने जो अध्ययन किया इसमें से सार तुमने क्या समझा वो थोड़ा सा हमको बतला दो। तो वो कह रहे हैं अतीत, जो ऐसा अतीत माने अध्ययन किया है अर्थात जो समझता है, कैसा विष्णु के लिए जो के संबंध में जो श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन आचरण अर्चन बंधन दास्य सत्य आत्मीय नौगा जो है, यदि इति पुंसार्पिता भक्ति ये नौलक्षणा भक्ति यदि भगवान के चरणों में अर्पित करके तब करते हैं तब तो ये भक्ति है। अर्पित किया नहीं तो भगवान का कथा सुनना भी ये नहीं। यहाँ अर्पित मैंने क्या इसको समझिए, यहाँ पर अपने को अर्पित करो जे मैं आपका हूँ और आपके प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा। मैं ये जो आपका अर्पण कर रहा हूँ इसे आप प्रसन्न हो, हम बदले में कुछ चाहते नहीं। इसलिए अपने को ही अर्पण जिन्होंने कर दिया और करने के बाद में जो करते हैं तब तो भक्ति होगी, अन्यथा भक्ति नहीं होगी। भागवत की कथा सुनने से ही ये भक्ति नहीं हो जाएगी, कब होगी? यदि अपने को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो, पहले गुरु भगवान के यहाँ अपने को अर्पित करो, भगवान कभी मिल नहीं रहे तो गुरु रूपी जो भगवान है जो हमको ले जाना चाहते हैं उनके चरणों में अपने को अर्पित, मैं तुम्हारा हूँ। यदि मैं उनका हो गया तो मेरा वस्त्र उनका हुआ कि नहीं,
सब
हमारा चश्मा उनका हुआ कि नहीं, यदि मैं ही हो हमारा घर उनका हो गया कि नहीं, हमारे जितने परिवार के लोग हैं सब उनके हो गए कि नहीं, यदि पहले ही मैंने अर्पण कर दिया इसलिए हमारा सब कुछ उनका हो गया, इसलिए मेरा किया हुआ जो कुछ है वो भक्ति हो जाएगी। और जिन्होंने ऐसा नहीं किया समर्पित आत्मा नहीं है
वो लाख करते हैं उत्पात या कुछ सुकृति होकर के पीछे पीछे फिर गुरु के चरणों में शरणागत होकर के दीक्षा इत्यादि लेकर के इसलिए कहते हैं उस श्रेणी की तो यह है नहीं। अभी जो कहा कर्म अर्पण, ये जो कर्म अर्पण है पहले कर्म करके तब उसको अर्पण कर रहे हैं एक ये स्थिति, और एक है पहले अपने को अर्पण करके तब फिर करते हो, ये दो बात है। जो लोग पहले अपने को अर्पित करके जो भक्ति का कर्म करते हैं वो उनकी तो भक्ति हो गई, और जिन लोगों ने अभी ऐसा नहीं किया, एक आम का पेड़ लगाया ये कर्म है ना, उसके यहां पर बतला रहे हैं यत् करोषि, गीता का यत् करोषि यदश्नाशि यज्जुहोषि ददाशि तत् जब तपस्यसि कौन्तेय तद् पुरुषम् अर्हम्। तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ स्नाशी खाते हो भोजन करते हो, यज्जुहोषि जो तुम हवन करते हो, ददाशि जो कुछ तुम देते हो, जब तपस्या जो तुम परिश्रम करते हो, तपस्या माने यहाँ पर सभी कुछ आए, जो कुछ परिश्रम करते हो तपस्या करते हो कौनते वो पुरुष्व मद अर्पणम, मद अर्पणम पुरुष्व मुझे अर्पण। इसमें एक और भी बात है, भगवान को जब तुम शराब पीते हो तो भगवान को पहले शराब दे दोगे, चाय पीते हैं हम तो भगवान को पहले चाय दे करके उसमें तुलसी पत्ता दे करके पियेंगे, बंगाल में लोग मछली खाते हैं तो उसमें भी तुलसी दे करके भगवान को अर्पण किया जाएगा। इसलिए ऐसी चीजें अर्पण नहीं करनी है, शास्त्र विहित शास्त्र में जिन चीजों को भगवान को देने के लिए आदेश दिया ऐसी सात्विक वस्तुओं को भगवान को अर्पण किया जाए। तब तो ये कुछ कर्म निष्ठा ज्ञान निष्ठा भक्ति हुई, अन्यथा भक्ति भी नहीं होगी। जिसको कहते हैं आरोप सिद्धा भक्ति, भक्ति को नहीं किंतु उसमें आरोप किया जाता, तो वो सब जगह आरोप नहीं किया जाता, सब कर्मों में जिसको वेद शास्त्र पुराणी श्रुतियां जिसको कहते हैं सब कर्म जिन्होंने व्यवस्था की है जीवों के लिए, ऐसे कर्मों का फल ही भगवान को अर्पण किया। तब तो ये कर्म मिश्रा हुआ, किंतु ये यत् करोषि अच्छा या बुरा जो कुछ तुम करते हो, यदश्नाशि जो कुछ खाते हो, यज्जुहोषि इसमें प्रतिबंध नहीं लगाया गया, ये शास्त्र श्रुति और स्मृतियों के द्वारा कहे गए हुए भी कर्मों का ही फल भगवान को दो इसमें नहीं। इसलिए ये तो वो जो आरोप सिद्धा बतलाया कर्म निष्ठा ज्ञान निष्ठा भक्ति वो भी नहीं है ये। इसलिए कहते हैं जो लोग अनन्य भक्ति के अधिकारी नहीं है, अनन्य भक्ति के बाद छोड़ दो, जो औपाधिक भक्ति जो आरोप सिद्धा और सम सिद्धा भक्ति है उसके भी अधिकारी नहीं है। यकीन के लिए है जगत में तीन प्रकार के लोग मान लिया गया, एक मूर्ख अज्ञ कुछ भी अच्छा बुरा भला कुछ नहीं जानता है, वो लोग वैदिक कर्मों को नहीं करते, भगवान का अर्पण करेंगे कुछ इसका प्रश्न नहीं है, वो तो अज्ञ है क्या अर्पण करेंगे। दूसरे होते हैं नास्तिक, वो जानते तो सब कुछ है किंतु उसमें विश्वास है वो करते नहीं, नास्तिक लोग जानते हैं, लोगों कहते कहां जा रहे हो तो जमुना में स्नान है, जमुना में स्नान कर गंदी पड़ी हुई है जमुना, उसमें जाएगा तो तुमको रोग इत्यादि हो जाएंगे, जमुना में क्या है, जैसे नदी नाले हैं वैसे भी एक नदी नाला है, ऐसा मत कहो, कहते हैं तब क्या था जमुना कोई देवी है? वो कहता है जो देवी है कहता है नहीं नास्तिक है, जो ईश्वरों नास्ति वेदा नास्ति, ईश्वर नहीं है वेद नहीं है वो लोग हैं नास्तिक, उनके लिए ऐसे कर्मों की कोई भी आवश्यकता नहीं, वो करेंगे नहीं। और जो अज्ञ व्यक्ति हैं कुछ भी नहीं जाते विषयों में एकदम लवलीन है, उनके लिए भी भगवान के अर्पण के लिए कोई बात नहीं। और तीसरा है अनन्य वाले, अनन्य जो भक्त हैं वो तो जानते हैं किंतु उनको भी उनके लिए ये नहीं कहा गया जब करो से। अनन्य भक्ति वाले तो भगवान के लिए अपने को समर्पण करके और सब करेंगे, सब भक्ति का कार्य श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण इत्यादि करेंगे, गुरु के यहाँ दीक्षा मंत्र लेकर के विधिवत भगवान से संबंध ज्ञान रख करके अपराधों को दूर करके भगवान का भजन करते हैं, उनके लिए नहीं। इनके लिए किनके लिए है? नास्तिक भी नहीं है, अत्यंत अज्ञ भी नहीं है, किंतु अभी कुछ श्रद्धा उदित होने जा रहे हैं, कुछ कुछ उनके संस्कार हैं, वो साधु गुरु वैष्णव की बातें कुछ कुछ सुनने समझने लगे हैं। ऐसे लोगों के लिए कहते हैं अच्छा भाई तुम नहीं कर सकता तो एक बात करो, तुम जप करो उसी, जो कुछ भाई खाते हो वो भगवान को अर्पण कर दो, जो खाते हो कर दो, जज हो सी जो हवन करते हो, जो कुछ देते हो उसको, जब तपस्या जो कुछ तपस्या करते हो वो हमको ही अर्पण कर दो। कृष्ण जानते हैं ऐसा करते 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 साधुओं का संग होगा और फिर समझ बूझ करके वैदिक वेद विहित कर्मों का फल ही वो हमको पीछे से देगा, अब ऐसी अज्ञता नहीं रह जाएगी। पहले इतना तो करे तो संसार वाले इतना तो पहले करेंगे जो कुछ करते हैं मुझे देवता देवी को नहीं और दूसरे को नहीं, किसको? मत अर्पणम, मत माने मुझे दो, माने कृष्ण को यहां पर देख लिया। ऐसा व्यक्ति बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति, साधारण नहीं, किंतु अभी प्रारंभिक है पर्वत भजन के लिए, बहुत प्रारंभिक, अभी भजन तजन पीछे नहीं है, पहले अपनी असत कर्मी भी है, किंतु धीरे धीरे साधुओं के संग में आने पर अपने कर्मों का अर्पण करते 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 तक ऐसा कुछ, इसलिए कह रहे हैं कि पुरुषव जब तपस्य पुरुष अर्पणम, भारत में भी ऐसा कहा गया है। एक आया है ऐसा निहजत कर्म धर्माय न विरागाय कल्प कल्पते और एक ऐसा और है तावत कर्माणि पूर्वित न निर्विद्येत यावता मत तथा शरणादो वा श्रद्धा जम न जाये। तावत कर्माणि पूर्वित, कर्म कब तक करो, कब तक हम लोगों को कर्म करना चाहिए?
जब तक कर्म से निवृत्त
न हो, कर्म से कभी भी कल्याण नहीं होगा, उससे बंधन में हो जाएगा, चाहे शुभ कर्म करो अशुभ कर्म करो, तो एक लोहे की बेड़ी और एक सोने की बेड़ी है। अच्छा कर्म करोगे उसके भोगने के लिए फिर तुमको जन्म लेना पड़ेगा, और बुरा कर्म करो तो उसका दंड भोगने के लिए फिर तुमको आना पड़ेगा, इसलिए वो बेड़ियां दोनों हैं। एक सोने की बेड़ी अच्छी देखने में सुनने में लगती है किंतु वो भी बेड़ी है, सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी कौन अच्छा?
दोनों
बेड़ियां हैं, किंतु लोग कहेंगे सोने की बेड़ी अच्छी होती है क्योंकि कीमती है ना, कीमती होने से वो और बंधन है, इसलिए कर्म मात्र ही बंधन है। गीता में कहा गया है ना यज्ञा अर्थात कर्मणो कर्म बंधना तदर्थम कौन संथेय मुक्त संग समाज, मुक्त संग मैंने कर्मों में आसक्ति छोड़ करके शास्त्र विहित कर्म है वो मेरे लिए करो तो ये यज्ञ होगा,
ना? शास्त्र भी तो नहीं होगा तो वो यज्ञ नहीं होगा। निष्काम कर्म अर्पित कर दो भगवान, तब तो होगा। कर्मों का फल छोड़ करके इसका क्या अच्छा या बुरा फल है छोड़ दो। और छोड़ करके जैसे एक लड़की की शादी करना है संसारी, अब उसके फल में आसक्ति छोड़ करके अपने कर्तव्य के लिए उसकी शादी, यदि वो निष्काम कर्म होगा और उसका फल भगवान को अर्पित कर दिया जाएगा तो एक तरह से ये यज्ञ, इसी को कहते हैं कन्यादान, ये यज्ञ हुआ, यज्ञ कराता है ना ये यज्ञ। उसी तरह से और सब चीजें, यदि उसमें से अपने कर्मों का फल नहीं छोड़ा, आसक्ति नहीं छोड़ा, तो वह जन्म बंधन में कर्म करेगा। वो जिसको तुमने कन्यादान दिया है वो तुमको कन्यादान के लिए तुम कन्या बनेगा और तुमको वो देगा, ये कर्म फल में रहेगा। इसलिए ये कहते हैं ये कर्म निष्कर्मम अपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम जिस प्रकार से निष्काम कर्म है उसमें कोई भी मल नहीं है, कभी वो शोभित नहीं होता, उसकी शोभा नहीं होती। यदि भगवान को अर्पित नहीं होता है